नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। करीब दो महीने पहले परिचालन शुरू करने वाली अकासा एयर नवंबर से यात्रियों को हवाई सफर के दौरान अपने साथ पालतू कुत्तों और बिल्लियों को ले जाने की इजाजत देगी। इसके साथ ही कंपनी नवंबर से कार्गो सेवाओं की शुरुआत भी करेगी। साथ ही आने वाले सप्ताह में परिचालन में नए मार्गों को जोड़ा जाएगा। अकासा एयर की 2023 की दूसरी छमाही में अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करने की भी योजना है। कंपनी के बेड़े में 20 विमान होने के बाद इन सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। विमानन कंपनी अकासा एयर का प्रदर्शन परिचालन शुरू होने के पहले 60 दिनों में संतोषजनक रहा है। एयरलाइन के CEO विनय दुबे ने ये जानकारी दी। एयरलाइन ने इस साल अगस्त में परिचालन शुरू किया था और उसके अगले साल की दूसरी छमाही में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने की भी योजना है। कंपनी के बेड़े में 6 विमान हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक बेड़े का आकार बढ़ाकर कुल 18 विमान तक करने की तैयारी है। दुबे ने कहा कि कंपनी नए निवेशकों की तलाश में है। उन्होंने यहाँ कहा, हम अपने प्रदर्शन से बहुत खुश और संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एयरलाइन योजना के अनुसार चल रही है। कंपनी इस समय रोजाना 30 उड़ानें भर रही है एवं 7 अक्टूबर से दिल्ली से सेवाएं शुरू होंगी। केनरा बैंक द्वारा परिवर्तित आवास ऋण कंपनी केनफिन होम्स 4000 करोड़ रुपए तक की ऋण पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इस महीने के अंत में इस प्रस्ताव पर निदेशक मंडल की मंजूरी लेगी। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही और पहली छमाही के लिए वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 17 अक्टूबर 2022 को होने वाली है। केनफिन होम्स ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा, निदेशक मंडल की बैठक में निजी नियोजन के आधार पर 4000 करोड़ रुपए तक के गैर परिवर्तीय विमोच्य डिबेंचर जारी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। कंपनी ने कहा कि वह चालू वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक की तारीख तय की अवधि में एक या अधिक चरणों में ये राशि जुटाई जाएगी। आवास ऋण देने वाली कंपनी ने कहा कि इससे पहले शेयरधारकों ने 7 सितंबर 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में ऋण वृद्धि योजना को मंजूरी दी थी। केनफिन होम्स में केनरा बैंक की 29.99% हिस्सेदारी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार ने चीन के साथ ऋण पुनर्गठन पर चर्चा शुरू की है। द्वीप देश इस समय बेहद मुश्किल आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है और IMF से राहत पाने के लिए चीन के साथ ऋण पुनर्गठन बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि शुरुआती बातचीत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की बैठक के बाद जारी रहेगी। ये बैठक 16 अक्टूबर को शुरू हो रही है। हाल में जापान की यात्रा से लौटे विक्रमसिंघे ने यह भी कहा कि जापानी अधिकारी चीन के साथ वार्ता में मध्यस्थता करने के लिए सहमत हैं। विक्रमसिंघे ने कहा, चीन प्राचीन काल से हमारी मदद करता रहा है और हमें भरोसा है कि वह इस कठिन समय में भी ऐसा ही करेंगे। श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है और उसने अपने 51 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण को चुकाना बंद कर दिया है। उसे 2027 तक 28 अरब डॉलर चुकाने हैं। रियल्टी फर्म महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को एक्टिस के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की। इस संयुक्त उद्यम के तहत औद्योगिक और लॉजिस्टिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। एक्टिस एक वैश्विक निवेश फर्म है। महिंद्रा लाइफ स्पेस ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने पूरे भारत में औद्योगिक और लॉजिस्टिक अचल संपत्तियों के विकास के लिए एक्टिस के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने को बाध्यकारी समझौता किया। महिंद्रा लाइफ स्पेस या उसके सहयोगी और एक्टिस या उसके सहयोगी संयुक्त रूप से एक विशेष उद्देश्य कंपनी में निवेश करेंगे। महिंद्रा लाइफ स्पेस इन संस्थाओं में 26% से 40% तक हिस्सेदारी रख सकती है और बाकी स्वामित्व एक्टिस या उसके सहयोगियों के पास होगा। वैश्विक बाजार में तेजी और रुपए में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 497 रुपए की तेजी के साथ 52,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। इसके पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,723 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 80 रुपए की गिरावट के साथ 61,605 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो पहले 61,685 रुपए प्रति किलोग्राम थी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण स्थानीय मुद्रा में भारी उतार चढ़ाव के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 81.66 प्रति डॉलर पर आ गया। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधि सितंबर में 6 महीने के निचले स्तर पर आ गई। इस दौरान मुद्रास्फीति के दबाव के बीच नए व्यापार में सबसे धीमी दर से बढ़ोतरी हुई। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक अगस्त में 57.2 से घटकर सितंबर में 54.3 पर आ गया। ये मार्च के बाद सबसे धीमी दर से विस्तार को दर्शाता है। हालांकि लगातार 14वें महीने सेवा क्षेत्र की गतिविधि में विस्तार देखा गया। PMI की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के संयुक्त निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, भारतीय सेवा क्षेत्र ने हाल के महीनों में कई बाधाओं को पार किया। ताज़ा PMI आंकड़े सितंबर में वृद्धि की गति से कुछ धीमा पड़ने के बावजूद मजबूत प्रदर्शन को दर्शाते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।